धवला लेक्चर नंबर 13 रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर रची हुई है और जिसके कर्ता है श्री भगवंत पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। यहाँ हम 106 पृष्ठ पर आ गए हैं 106। देखो पहले देख लो 105 पर क्या देखा था। ये बात किसकी चल रही थी? श्रुत की,
श्रुत की,
द्रव्य श्रुत भाव श्रुत की बात अपनी चल रही थी। तो द्रव्य श्रुत के भेद बताए थे, एक अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, यानी पूरे जिसको हम द्वादशांग की रचना कहते हैं, गणधरों ने जिसकी रचना की थी वो तो 12 अंग है और इन एडिशन ये 14 प्रकीर्णक होते हैं, उसको अंग बाह्य श्रुत कहते हैं। एक अंग प्रविष्ट यानी अंग, और अंग 12 अंग है और इन एडिशन जो है ये जो 14 है वो उसको प्रकीर्णक कहते हैं। वो पूर्व अलग है, वो 12वें अंग में होते हैं, वो इंक्लूडेड है 12 अंगों में, 14 पूर्व इंक्लूडेड है, परंतु यह 14 प्रकीर्णक की बात है। तो ये प्रकीर्णक है उसको अंग बाह्य कहते हैं। और अंग प्रविष्ट में हमने देखे थे आचारांग है, सूत्रकृतांग है, स्थानांग है, समवायांग है। देखो यहाँ से नाम देख लो उसके, और उसका हमने विस्तार से स्वरूप भी देखा था। पांचवा कौन सा था? व्याख्या प्रज्ञप्ति। छठा नाथ धर्म कथा है, दूसरा उसका नाम है ज्ञातृ धर्म कथा, और सातवा है उपासका अध्ययन। देखो देखो 102 पर मैं देख रही थी, सारे जो नाम लिखे हैं वो 100 नंबर के पृष्ठ पर लिखे हैं 100। अंग प्रविष्ट के अर्थाधिकार 12 है, मिला? आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या प्रज्ञप्ति, नाथ धर्म कथा, उपासका अध्ययन, यहाँ तक देखा ना हमने। ये अंतकृत दशांग, अनुत्तर उपपादिक दशांग, उसके बाद 3 है प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। उसकी बात हम पढ़ रहे थे कल, प्रश्न व्याकरण की भी बात हमने देखी थी। प्रश्न व्याकरण का अपना प्रकरण चल रहा था, 105 पृष्ठ पर बात है। ये द्रव्य श्रुत के भेदों की चर्चा अपनी चल रही थी। देखो 105 पेज पर नीचे का पैराग्राफ, प्रश्न व्याकरण नाम का अंग, उसमें कितने पद है वो पहले बताएंगे, 93,16,000 पदों के द्वारा, और उसमें 4 प्रकार से कथन आता है, उसी को कथा कहेंगे, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी, इन 4 कथाओं का वर्णन करता है। और ब्रैकेट में क्या लिखा, और इन एडिशन क्या है, तथा भूत भविष्यत और वर्तमान काल संबंधी धन धान्य लाभ लाभ जीवित मरण जय पराजय संबंधी प्रश्नों के पूछने पर उनके उपाय का वर्णन करता है। तो उसका फल कैसे जानना वगैरह उस संबंधी उसका उपाय का वर्णन करता है। अब ये आक्षेपणी विक्षेपणी क्या है उसकी बात यहाँ करें तो कहते जो नाना प्रकार की एकांत दृष्टियों का, एकांत दृष्टि यानी जो मिथ्या मत है अलग अलग, ये सर्वथा नित्य ही है, अनित्य ही ऐसा कहने वाले जो है वो एकांत दृष्टि है। और दूसरे समयों का, दूसरे समय ने यही परमत है, सांख्य मत है, वैशेषिक है, नैयायिक है, जो किसी ने इतने परमत है। स्व समय ने जिनमत, जिनेन्द्र भगवान ने बताया हुआ, और बाकी सारे जो है वो परमत है, उसको पर समय भी कहते हैं। यहाँ समय ने एक समय दो समय वाली वो बात नहीं है, उसका निराकरण करना ने खंडन करना, वो कैसे सही नहीं है उसको बताना, उसको कहेंगे उसका निराकरण करना। तो निराकरण पूर्वक शुद्धि करके छह द्रव्य और नौ प्रकार के पदार्थों का प्ररूपण करती है, उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। यानी इसमें जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए तत्वों का निरूपण होता है, और ये तत्वों का निरूपण ही परमत का खंडन करने वाले होते हैं। डायरेक्ट जाके वो ये बात कैसे गलत है, वो कैसे गलत है, इसका कथन नहीं करेंगे। कथन तो अपने मत का होगा, स्व मत का वहाँ कथन होगा, उसी के द्वारा वो रूल आउट होता है। परंतु विक्षेपणी में क्या आता है, वहां तो पहले पर समय यानी अन्य मतियों का कथन कहेंगे कि इनका ऐसा कथन है, और फिर वो झूठ कैसा है वो बताएंगे। देखो शुरू से पढ़ते इसको 106 पृष्ठ पर, जो नाना प्रकार की एकांत दृष्टियों का और दूसरे समयों का निराकरण पूर्वक शुद्धि करके छह द्रव्य और नौ प्रकार के पदार्थों का प्ररूपण करती है, उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। ये कथन पद्धति है, उसमें अपने स्टेटमेंट अपना कर देंगे। दूसरे क्या है, जिसमें पहले पर समय के द्वारा स्व समय में दोष बतलाए जाते हैं, यानी अन्य मतियों का कथन कहेंगे, और वो जैनियों पर आक्षेप करे कि तुम ऐसा कहते, तुम खोटा कह रहे, ऐसे पहले स्टेटमेंट करेंगे। अनंतर पर समय के आधारभूत अनेक एकांत दृष्टियों का शोधन करके स्व समय की स्थापना की जाती है, यानी उन्होंने जो हम पर आक्षेप किए हैं या जैनियों का मत खोटा ऐसा जो बताया है, तो ये कहने वालों का कहना कैसा झूठ है वो यहाँ प्रूव करेंगे लॉजिकली।
एक सेंटेंस है ना, जिसमें पहले पर समय के द्वारा स्व समय में दोष बतलाए जाते हैं।
हाँ, जैसे बौद्ध और जैन दोनों सामने खड़े हैं,
हाँ,
तो बौद्ध कहेगा तुम झूठे हो, तो उसका क्या कहना है वो पहले वहाँ बताएंगे।
अच्छा, वहाँ पे दोष स्थापित,
बौद्ध मति और जैन मति मान लेते वाद के लिए बैठे हैं सब। पहले के जमाने में ऐसा होता था ना, तो वो कहते तुम झूठे हो, तुम ऐसा ऐसा कहते, ये सही नहीं, हमारा सही है, तो वो पहले जैनियों के दोष वो बता रहे हैं। अब हमारे आचार्य क्या कहेंगे, वो उनका ये दोष बताना कैसे खोटा है वो कहेंगे। जैसे यहाँ पर भी प्रश्न उत्तर आते हैं, पहले शंकाकार शंका करता है, तो शंकाकार तो विरुद्ध पक्ष प्रस्तुत करता है, फिर उसका निराकरण किया जाता है, उसको कहेंगे विक्षेपण। यानी फिर स्व समय की स्थापना की जाती है और छह द्रव्य नौ पदार्थों का प्ररूपण किया जाता है, उसे विक्षेपणी कथा कहते हैं। पुण्य के फल का वर्णन करने वाली कथा को संवेदनी कथा कहते हैं। देखो संवेद और ये निर्वेद, ऐसे दो शब्द आते हैं, या पुण्य या जिसको धर्म का फल या पुण्य का फल कहेंगे, और बाद में कहेंगे तो संसार देह वगैरह कैसे है उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न करने वाले, ऐसे दो पद्धति से कथन होता है। तो इसमें पहले संवेदनी कथा किसको कहते हैं, तो वो बताएंगे पुण्य के फल का वर्णन करने वाली कथा को संवेदनी कथा कहते हैं। अब पुण्य के फल कौन से हैं, शंका, उसका समाधान, तीर्थंकर गणधर ऋषि चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव देव और विद्याधरों की रिद्धियां पुण्य के फल है। पाप के फल का वर्णन करने वाली कथा को निर्वेदनी कथा कहते हैं। तो पाप के फल कौन से हैं, नरक तिर्यंच और कुमानुष की योनियों में, कुमानुष याद है ना, हमने वो द्वीप देखे थे कुमानुषों के, हाँ, वो एक गोरुक लांगुलुक वैशानिक, हाँ ऐसे देखे थे ना, अभाषक वगैरह वगैरह, तो नरक तिर्यंच और कुमानुष की योनियों में जन्म जरा मरण व्याधि वेदना और दारिद्र्य, यानी ये तो अन्य अन्य योनियों में जन्म लेना ये एक बात, और दूसरी वृद्धावस्था यानी जन्म होना ये भी एक, यानी क्योंकि जन्म मरण करते रहना, क्यों वो मिथ्या तो चल रहा है, इसलिए पाप का फल है जन्म होना। पैसा मिलना पुण्य का फल है। और ये पुण्य किसके पुण्य का कहते हैं, जो समय दृष्टि के पुण्य होते हैं उसी को पुण्य का, क्योंकि आपको याद होगा समय ज्ञान चंद्रिका में भी पुण्य द्रव पुण्य और पाप का वहाँ भेद किए थे। पुण्य जीव किसको कहा था, समय दृष्टियों को पुण्य जीव कहा था और बाकी पाप जीव कहा था वहाँ, यानी पाप पदार्थ भी कितने हैं ऐसा वहाँ पूछा गया था। पूर्व में समय दृष्टि थे, अभी वो भ्रष्ट हो सकते हैं, जैसे मिथ्या तो में चले जाते हैं ना, सातवें नरक का बंद करते उसका अर्थ क्या है, तब वो भ्रष्ट हो गए। समय दृष्टि के पुण्य के फल में मिलता है। जन्म से समय दृष्टि होना अलग बात है, परंतु आगे चलकर वो तो भ्रष्ट हो सकते हैं ना, छूट जाते हैं, वो उसी पद में रचे पचे रहते हैं। देखो जन्म जरा मरण व्याधि, व्याधि ने अनेक शारीरिक बीमारी मानसिक आदि कहते हैं, आदि व्याधि उपाधि उसको कहते ना, वेदना और दारिद्र्य आदि की प्राप्ति पाप के फल है। आदि में समझ लेना बाकी सब। अब किसी को तो हम बाहर देखते हैं अच्छे पैसे है, अच्छा शरीर है, गोरा पूरा है, बच्चे बच्चे है, फिर भी कुछ ना कुछ मानसिक भी कोई नहीं चिंता बनी रहती है, किसी के बच्चे नहीं मानते, किसी के और क्या क्या होते हैं, अभी मालूम है आजू बाजू देखते समाज में क्या क्या चलता है ना। अब निर्वेदनी किसको कहना, अथवा अथवा कह के दूसरी ओर से बता रहे, संसार शरीर और भोगों में वैराग्य को उत्पन्न करने वाली कथा को निर्वेदनी कथा कहते हैं। पुण्य के भी और पुण्य वो संवेदनी हो गया। दो अथवा कह के दो बातें बताए, पुण्य का फल बताए, निर्वेद नहीं वो पाप का फल। अथवा कहे ना, निर्वेद का दूसरे प्रकार के क्या अर्थ कर रहे हैं, संसार शरीर और भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाले। समय दृष्टि के गुणों का वर्णन आता है ना, वह कौन कौन से है, वो आस्तिक्य वगैरह बताए, वो वाले संवेग और निर्वेद वाले, वो निर्वेद वहाँ पर यही है, संसार देह तो उसके प्रति उसको वैराग्य होता है, यही ये कथा जो ऐसी है, कथा नहीं ये कथन जो जिससे ऐसे उत्पन्न हो उसको निर्वेदिनी कथा कहते हैं। कहा भी है, अब यहाँ 75 नंबर जिसमें नंबर नहीं डाला है उन्होंने, मगर वो हमने बाद में 75 नंबर, अभी जो पैराग्राफ है ना उसमें 75 नंबर ऊपर गाथा है उसका ये अर्थ है। पहले ऊपर की गाथा पढ़ेंगे। आक्षेपणी तत्व विधान भूता विक्षेपणी तत्व दिगंत शुद्धि संवेगिनी धर्म फल प्रपंचा निर्वेदिनी चाह कथां विरागां। नीचे उसका अर्थ किया है, तत्वों का निरूपण करने वाली आक्षेपणी कथा है, वो अपने तत्वों का निरूपण करती है वहाँ, वो परमत का डायरेक्ट जाके उसका खंडन करने नहीं जाती। तत्व से दिशांतर को प्राप्त हुई दृष्टियों का यानी मिथ्या दृष्टियों का, दिशांतरण या अन्य दिशा, जो सही तत्व है उससे विरुद्ध तत्वों को विरुद्ध कुछ बातों को बताने वाले दृष्टियों का अन्य मतों का शोधन करने वाली, शोधन करने वाले वो ठीक नहीं उसमें क्या दोष है वो बताने वाले, अर्थात परमत के एकांत दृष्टियों का शोधन करके स्वसमय की स्थापना करने वाली विक्षेपणी कथा है। विस्तार से धर्म के फल का वर्णन करने वाली संवेगिनी कथा है, यह धर्म ने वहाँ पुण्य कर समय ले लिया था और वैराग्य उत्पन्न करने वाली निर्वेदिनी कथा है। इन कथाओं का प्रतिपादन करते समय जो जिन वचन को नहीं जानता है, अर्थात जिसका जिन वचन में प्रवेश नहीं है, ऐसे पुरुष को विक्षेपणी कथा का उपदेश नहीं करना चाहिए। क्या कहा? जो जिनमत यानी जिसको ये क्षद्रव्य क्या है, सात तत्व नौ पदार्थ क्या है, इसके कोई पता ही नहीं है, तो कहते उनको ये नहीं कहना चाहिए। विक्षेपणी यानी परमत का पहले प्रस्तुतिकरण करो और बाद में खंडन करो, ये उनके लिए नहीं हो सकता। हाँ देखो, अभी हम 107 पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ देख रहे हैं। ये चार प्रकार से कथन आता है, उसको क्या क्या नाम दिए थे? आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेगिनी, निर्वेगिनी। विक्षेपणी में क्या होता है, पहले एकांत परमतवादी जो है जैनियों पर जो आक्षेप करते हैं ना, पहले आक्षेपणी नहीं, आक्षेपणी ऐसा उसका नहीं है। आक्षेप अपने मतों का स्टेटमेंट सीधा।
देखो हमने ऐसा बताया कि ये विश्व अनादि अनंत है, क्या आचार्य ने लिख दिया? आचार्य ने लिख दिया कि विश्व अनादि अनंत है, इसका अर्थ क्या हो गया? ये विश्व किसी ने नहीं बनाया। परमत का क्या अंदाजा है? किसी ने ये विश्व की उत्पत्ति की है, वो उसका रक्षण करता है, वगैरह वगैरह। तो हमने क्या समझ, अपने आचार्य ने क्या बताया? विश्व यानी छह ही द्रव्य अनादि अनंत है, हमने जो इतने स्टेटमेंट दिया तो वो आक्षेपणी हो गई। हाँ, और दूसरी जो है वो विक्षेपणी का अर्थ ऐसा है, पहले ये लोग ऐसा कहते हैं, यानी मान लो कि बौद्ध मत ऐसा कहते कि विश्व यानी छह ही द्रव्य क्षणिक है, लेकिन क्षणिक है तो कहने वाला भी तो यह बोलने वाला, ह बोलने वाला अलग अलग हो गया, क्योंकि एक एक समय में एक एक निकल जाता है ना, तो सुनने वाला भी जो पहला शब्द सुना वो नहीं रहा, दूसरा कोई रहा, ऐसा उसका रूल आउट करना, ये विक्षेपणी कथा हुई। अब आगे की बात बता,
आक्षेपणी क्या है, विक्षेपणी ये तो समझ में है। यहाँ क्या कहते हैं कि जिसका जिनमत संबंधी कोई अभ्यास नहीं है, तो उसके पहले विक्षेपणी कथा नहीं समझाना चाहिए, उसका उपदेश नहीं करना चाहिए। आपने बहुत सारे ऐसे सुने होंगे, वो कहते हैं हम सभी दर्शनों का अभ्यास करेंगे फिर जैन दर्शन पढ़ेंगे, और यहाँ तो उसको निषेध कर रहे हैं। समझ में आई बात? क्योंकि उसको अभी सही क्या है क्या मालूम नहीं है, तो ये विक्षेपणी कथा करने से वही सही लगता है उसको, क्योंकि उसमें क्या है, क्योंकि जिनमत यानी छह द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उत्पाद विद्रोहता क्या है, ये जिसने जाना है समझा है, तो उसके आधार से वो दूसरे को जब खंडन कर रहे हैं वो बात उसकी समझ में आ जाए। नहीं तो द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, मालूम नहीं है, और वो क्षणिक कहने वाला इसको कहते हैं, हाँ हमको भी सब क्षणिक दिख रहा है, अरे वो क्षणिक दिख रहा है, वो अवस्था है, पर्याय है, मतलब ये मालूम ही नहीं है तो उसको कैसे समझेंगे। इसलिए कहते हैं देखो, इन कथाओं का प्रतिपादन करते समय जो जिन वचन को नहीं जानता है, अर्थात जिसका जिन वचन में प्रवेश नहीं है, ऐसे पुरुष को विक्षेपणी कथा का उपदेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसने स्व समय के रहस्य को नहीं जाना है और पर समय की प्रतिपादन करने वाली कथाओं के सुनने से व्याकुलित चित्त होकर वह मिथ्यात्व को स्वीकार न कर लेवे, इसलिए स्व समय के रहस्य को नहीं जानने वाले पुरुष को विक्षेपणी कथा का उपदेश न देकर शेष तीन कथाओं का उपदेश देना चाहिए। यानी कोई नया है, कोई अन्य मति भी है, तो कहते तू तेरा मत कैसे खोटा, ये पहले मत बता उसको, पहले ये बता बाकी क्या है, अन्य तीन प्रकार का उपदेश दे दो, जो जानने लगेगा तब जाके उसको समझाओ इस भाषा में। चलने उक्त तीन कथाओं द्वारा आपको कुछ बोलना है?
कल इतवार का दिन था, बहुत मेहमान आए थे हमारे पास, हर पूरा दिन इसको संभालो उसको संभालो ऐसे ही पूरा दिन गया। तो उसमें एक जन आए थे हस्बैंड वाइफ, बोले अरे दिनेश भाई आप तो गांव-गांव जाते हैं तो हमारे लड़के के लिए कोई अच्छी लड़की आप जरा हमको सजेस्ट करना या उनको हमारे बेटे के बारे में बताना। तो हमने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, आप भी जैन हैं हम भी जैन हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपके घर में ये जो फल फूल चढ़ाते हैं या कोई भी महाराज आवे तो उनके आव भगत करते हैं, वो लोग तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो हम जहाँ जाते हैं क्योंकि आपने यहाँ तो सारे मुमुक्षु जीव है ना, हम जहाँ जाएंगे वो लोग ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोले क्या हो गया? बोले हम जब पूजा करते हैं तो उसके बाद वो क्या बोलते हैं नमस्कार करें। मैंने कहा बन मुनियों को भी ऐसा नहीं, नहीं मुनियों को तो नमस्कार करना चाहिए लेकिन सच्चे ऐसा करने से वो एकदम भड़क गया, जाने दो हमको माफ करना हमने आपसे पूछा ये है वो है वो है। तो ये विक्षेपनी कथा मैंने करी समझ
देखो यहाँ तू सच्चा के मैं सच्चा ये बात ये तो विवाद में पड़ना ही नहीं किसी के साथ। यदि वो समझे ऐसा कहना है तो पहले में पहले सही बात समझा उसको, तू खोटा है और मैं सच्चा हूँ कहने से तो कोई मानने वाला है बात है ना। यदि उस जीव के प्रति करुणा है तो उसको सही बात समझाना चाहिए और बाद में ये बात करनी चाहिए। तो ये बाकी तीन कथाएं करनी चाहिए। उक्त तीन कथाओं द्वारा जिसने स्व समय को भली भांति समझ लिया है, स्व समय ने जिनमत को अच्छी तरह समझ लिया है, जो पुण्य और पाप के स्वरूप को जानता है, जिस तरह मज्जा अर्थात हड्डियों के मध्य में रहने वाला रस यानी हड्डी है ना अंदर से पोली होती है और उसमें वो बोन मैरो रहता है ना उसको यह मज्जा कहा, हड्डी से संसक्त होकर ही शरीर में रहता है यानी उसके कांटेक्ट में उसके संसक्त होकर हड्डियों के मध्य में रहने वाला रस जो है, पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। मिलजुल के उसी में रहता है, उससे उसके बिना बाहर तो नहीं रह सकता ना। हाँ, संसक्त होकर ही शरीर में रहता है। उसी तरह जो जिन शासन में अनुरक्त है, अनुरक्त है ना उसके प्रति जिसको भी उसने पढ़ा है उसको और उसमें उसकी प्रीति हो गई है, अनुरक्त है जिन वचन में जिसको किसी प्रकार की विचिकित्सा नहीं रही है, घृणा कहो संशय कहो, संशय अलग बात है, विचिकित्सा हम किसको कहते हैं? घृणा को कहते हैं, घृणा घृणा। और जो भोग और रति से विरक्त है यानी कोई किसी को संशय कहो या उसके प्रति विरुद्ध भाव जिसके मन में नहीं है, और जो भोग और रति से विरक्त है यानी बाकी दुनियादारी से उसको रस नहीं रहा, और जो तपशील और नियम से युक्त है, ऐसे पुरुष को ही पश्चात विक्षेपणीय कथा का उपदेश देना चाहिए। क्योंकि ये जो अन्य मतों के तत्व तो हमारे भी आचार्यों ने पढ़े थे, जैसे यहाँ तो प्रोडोमल जी साहब ने भी उनका अभ्यास करके फिर वो कैसे खोटे वो बताया था, विविध मत समक्ष नाम का पांचवें अधिकार में उन्होंने बात बताई थी। प्ररूपण करके उत्तम रूप से ज्ञान कराने वाले के लिए यह कथा, यह अकथा भी तब कथा रूप हो जाती है। क्या कहा? ये विक्षेपणी वाली क्या है? अकथा है ना, पहले अन्य मतियों का सारा तत्व निरूपण करना पड़ता है, जैनियों के दोष बताते हैं वो तो ठीक नहीं है, परंतु बाद में उसको निराकरण भी किया जाता है, तो वो तो उसी को पचेगा ना जिसने जिनमत का दृढ़ अभ्यास किया है। तो प्ररूपण करके उत्तम रूप से ज्ञान कराने वाले के लिए यह अकथा भी तब कथारूप हो जाती है। इसलिए योग्य पुरुष को प्राप्त करके ही साधु को कथा का उपदेश देना चाहिए। यानी योग्य पुरुष यानी सामने वाला जीव कैसा है उसके अनुसार उसको उस पद्धति से उस कथन पद्धति से उसको उपदेश देना चाहिए। यह प्रश्न व्याकरण नाम का अंग प्रश्न के अनुसार हत, नष्ट, मुष्टि, चिंता, लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवित मरण, जय पराजय, नाम, द्रव्य, आयु और संख्या का भी प्ररूपण करता है। यानी ये अलग अलग जो कुछ मेरे ख्याल से निमित्त ज्ञान कहलाते नहीं है, यानी कोई हत नष्ट है ना, वो हत यानी हत और नष्ट, हत यानी वो तो नाश, हत यानी नाश होना यानी मरना के अर्थ में होता है ना हत, या मारा हुआ, हाँ मारना है ना, हारना, 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 हत, नष्ट यानी नष्ट होना, मुष्टि यानी मुट्ठी में, वो बोलना अलग बात है। मुट्ठी में बंद वस्तु वो बराबर है, वो मुष्टि होता है। हत के लिए हराना लिखा
है,
हत के लिए लॉस लिखा है क्या? हाँ हमने बताया होगा या शायद उसमें से निकाला होगा हमने, जरा वो समय ज्ञान चंद्रिका निकालना। लेफ्ट साइड में हाँ माँ अधिक था, वो लाल वाली राइट साइड से पाछे, हाँ हाँ वही इकर, ये बाजू, हाँ एक निकालो आपके लिए चाहिए। तो ये ने इसमें हाँ उसमें से दिया है, तब भी हमने वो जीवकांडी पढ़ा होगा। ये सारे निमित्त ज्ञान के अलग अलग भेद थे शुद्ध ज्ञान में, वहाँ उसके भेद बताए ना। अवधि ज्ञान के पहले होगा ये, प्रश्न व्याकरण के होकर के अंदर होगा, पेज नंबर 508 वगैरह कुछ होगा। नहीं ये तो उसके पहले 502-3 देखो, ये पूर्व की बात है, उसके भी पहले, एक मिनट 491 ले लो, वहाँ चार अक्षेपणी विक्षेपणी बताई है, 492 में नहीं उन्होंने विस्तार नहीं बताया उसका। हत्या इन्हें लॉस्ट हो सकता है, हत्या नष्ट, क्योंकि निमित्त ज्ञान में वो बाकी बातें आई थी, पृथ्वी को देखना नहीं, हाँ हतका नहीं मिला, वही लॉस्ट हो सकता है, नष्ट, मुष्टि यानी मुट्ठी में बंद है, चिंता क्या विचार कर रहा है, लाभ अलाभ, सुख दुख तो समझते हैं, जीवित मरण, जय पराजय, नाम द्रव्य आयु और संख्या का भी प्ररूपण करता है। यानी उसके बारे में कोई प्रश्न है तो उसका यहाँ बताया था ना, प्रश्न पेज नंबर 105 पर बताया था। प्रश्न व्याकरण में ब्रैकेट में बताया था नीचे से दूसरी तीसरी लाइन, भूत भविष्यत वर्तमान काल संबंधी धन धान्य लाभ अलाभ जीवित मरण जय पराजय वगैरह संबंधी प्रश्नों के पूछने पर उसका उपाय ना उसका जानने का उपाय यहाँ बताएंगे। मेरे ख्याल से हत यानी लॉस हो सकता है, मिला आपको श श स ह, स के बाद ह होगा। हाँ लॉस्ट आया ना, लॉस्ट में हत में लॉस्ट भी लेना, लॉस्ट या किल ऐसा हो सकता है उसने हाथ उसको लॉस्ट और किल्ड दोनों हो सकते हैं। लॉस्ट यानी किल्ड ऐसे दोनों किल्ड और लॉस्ट दोनों अर्थों में लिखेंगे। नष्ट हुआ जो मुट्ठी में रखा हुआ, चिंता यानी जो कोई इस संबंधी विचार में लिया है, लाभ अलाभ सुख दुख जीवित मरण यानी इस संबंधी कोई प्रश्न पूछता है तो उस संबंधी उत्तर कैसे देना क्या है। हाँ परंतु इस अंग में उसका वर्णन बताया है। विपाक सूत्र नाम का 11वां अंग देखते हैं। 1,84,00,000 पदों के द्वारा पुण्य और पाप रूप कर्मों के फलों का वर्णन करता है। पुण्य अलग अलग पुण्य के उसके फल और पाप के फल देखो कितने, 1,84,00,000 पद है, कितना कितना क्या क्या होगा है। अब 11 अंग हमने अभी तक पढ़े, याद है नाम, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, देख कर नहीं ज्ञातृ धर्म कथा या उसी का दूसरा नाम है
नाथ धर्म कथा,
ज्ञातृ धर्म कथा,
नाथ धर्म कथा,
नाथ धर्म कथा, सातवां उपासक
अध्याय,
फिर अंतकृत दशा,
अंतकृत दशा,
अनुत्तरोपपाद दशा, दसवां अभी हमने देखा था प्रश्न व्याकरण और विपाक सूत्र, विपाक यानी कर्मों का विपाक और उसके फल बताएंगे। तो ये 11 मिलकर कितने पद है, तो 11 अंगों के कुल पदों का जोड़ 4,15,02,000 है, 4,15,02,000, 4,15,02,000 और अकेले दृष्टिवाद का ना 108 करोड़ समथिंग होगा क्योंकि सबका मिलकर 112 करोड़ वगैरह वगैरह होता है ना। अभी हम इसको पढ़ेंगे, देखो दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग है। ये मिथ्या दृष्टि को तो 11 अंगों तक पढ़ा ऐसा भी आता है, आपने बहुत बार सुना होगा 11 अंग का इतना सारा ज्ञान हुआ फिर भी हो सकता है मिथ्या दृष्टि रहा। अब दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग है, दृष्टिवाद, उसका दृष्टिवाद शब्द कैसे आया देखो जरा, नीचे का 3 नंबर का फुट, 3 नंबर की फुट नोट देखेंगे नीचे लास्ट एकदम, दृष्टि नाम 360 उत्तर 300 संख्या नाम 363 संख्या वाले मिथ्या दर्शना नाम वादो अनुवाद तन निराकरण च यस्मिन क्रियते तद दृष्टिवादम नाम। क्या कहा, जिसमें मिथ्या 363 पाखंड मत होते हैं ना उनका इसमें निराकरण किया जाता है, इसलिए इसका नाम है दृष्टिवाद। अब ऊपर आते हैं, दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग है, आगे उसके स्वरूप का निरूपण करते हैं। दृष्टिवाद नाम के अंग में अब ये जो 363 कैसे कैसे हुए हैं तो उसके लिए उसके भेद बता रहे हैं, सारे जो पाखंड मत है एकांतवादी जिसको कहेंगे तो उसमें भी 4 भेद होते मुख्य। देखो एक होता है क्रियावादी, ये आएगी बात मैं पहले बता रही हूँ, एक है क्रियावादी इसमें बताया लास्ट लाइन में आ गए हैं, दूसरा होता है अक्रियावादी, तीसरा है अज्ञानवादी और चौथा है वैनयिकवादी। किसके कितने मत है वो बताएंगे अभी देखो। तो ये दृष्टिवाद नाम के अंग में नीचे से दूसरी लाइन पढ़ रहे 108 पेज पर, कौतकल कांठे विद्धि कौशिक हरिश्मश्रु मांधपिक रोमश हारित मुंड और अश्वलायन आदि क्रियावादियों के 180 मतों का आगे चलकर कहेंगे इतने मतों का निराकरण किया है, उनका वर्णन करके उसका निराकरण किया जाएगा। ये सारे क्रियावादी हो गए। फिर मरीचि कपिल उलूक गार्ग्य व्याघ्रभूति वादबली माठर और मौद्गल्यायन आदि अक्रियावादियों के 84 मतों का, क्रियावादियों के 180 थे इनको 84 है। शाकल्य वल्कल कुथुमी सात्यमुग्री नारायण कण्व माध्यंदिन मोद पैप्पलाद वादरायण श्रेष्ठकृत ऐतिकायन वसु और जैमिनी आदि अज्ञानवादियों के 67 मतों का 67। हाँ, वशिष्ठ पाराशर जतुकर्ण वाल्मीकि रोमहर्षणी सत्यदत्त व्यास एलापुत्र औपमन्यु ऐन्द्रदत्त और अयस्थुन आदि वैनयिकवादियों के 32 मतों का वर्णन और निराकरण किया गया है। उनके क्या मत है बता के उसका निराकरण करते हैं। पूर्व में कहे हुए क्रियावादी आदि के कुल भेद 363 होते हैं, क्रियावादियों के 180 और क्रियावादियों के 84, अज्ञानवादियों के 67 और वैनिक के 32। इस तरह से देखो क्रियावादी में क्या है, क्रियावादी में तो अभी उसमें हमने कर्मकांड में उसके सारे बहुत सारे भेद देखे थे, 180 कैसे होते हैं वो हर एक पर। जैसे आपको वो प्रमाद वगैरह के भेद मालूम है, एक एक लाइन में हमने एक एक देखते हैं फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी बाकी वो छोड़ो, इतना मन वचन का है कृतकारिता अनुमोदना क्या करते हैं 3x3 हर एक के साथ एक एक को जोड़ते हैं। ऐसा ही यहाँ क्या किया है उन्होंने, पार्टी नहीं लिया, 10 सर है मेरे पास, अंदर ही। अच्छा, यहाँ 5 बातें लिखी है, फिर 9 बातें लिखी है, यहाँ 4 बातें लिखी है और सबके लिए एक पर लगाया, तो इसकी कितनी होती है 5x20 9x20 180। ये उसके भेद कैसे किए वो बताए। ये 5 में क्या क्या लिया है उन्होंने, एक है काल ईश्वर आत्मा नियति और स्वभाव, और 9 में 9 पदार्थ ले लिए, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय बंध समनि जरा मोक्ष। 5 में काल ईश्वर
आत्मा
आत्मा नियति और स्वभाव स्वभाव 9 में 9 तत्व यानी उसके जी ऐसा लिखो जी जीव अजीव हर एक का एक एक सिंगल अक्षर लिखो तो भी चलेगा। अब 4 बातें क्या लिखना है, एक तो स्वयं से, दूसरा है पर से, तीसरा है नित्यपने से और चौथा है अनित्यपने से। और नीचे एक पर लगाना है तो एक मैं यहाँ अस्थि लेना है। क्रियावादी है ना, यानी वो काल पर लगा लेंगे, फिर एक तत्व में से एक को लेंगे, फिर नीचे 4 है स्वयं से उसको लेंगे, फिर उसका अस्थि है ऐसा कहेंगे, फिर वो काल को ही लिखेंगे, फिर दूसरा तत्व लेंगे स्वयं से ही लिखे अस्तित्व, यानी उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे। एक को कायम यानी एक सिंगल लाइन में बदलते रहना और बाकी को एक एक को फिक्स रखना, इस तरह से उसके कॉम्बिनेशन 180 हो गए। अक्रियावादी के लेना है कर्मकांड में किया हुआ
यहाँ पे लिखा है पर
हमने लिख के रखा था हाँ। तभी तो लिखा मैंने लिखा इसके ऊपर अक्रियावादी में वो पांच बातें वही है
काल ईश्वर
आत्मा नियति और स्वभाव उसका एक एक अक्षर लिखो अक्रियावादी के
वहाँ पे सात तत्व हम लोग ने लिखे
बिल्कुल तभी तो उसकी संख्या कम होती है यहाँ नौ पदार्थ लिए थे वहाँ सात तत्व लेना
तो यहाँ पे नौ पदार्थ थे तो यहाँ पे नौ पदार्थ क्यों नहीं
अरे उसके अक्रियावादी के मार्ग में वो नहीं है वो जो मानते उसको बताएंगे कि आपके वो देखो अभी यहाँ एक के जगह नास्ती लेना वहाँ अस्ति लिया था ना यहाँ नास्ती लेना पांच वो पांच वही लेना है सात में सात तत्व लेना
तो नास्ती
जीव अजीव आश्र बंध संवर निजरा मोक्ष पुण्य पाप को हटा देना तो और यहाँ चार चार के बदले दो ही लेना स्व से और पर से स्वतः और परतः
वहाँ पे नास्ती हमने लिखा था वो किसके अपेक्षा स्व पर की
नास्ती नहीं ऐसा नहीं उनका मत क्या है अक्रिया वो कुछ नहीं
अच्छा,
करते
अक्रिया
ये नास्ती वाला पांच में वही लेना काल ईश्वर आत्मा नियति और स्वभाव सात तत्व दो ही बातें स्व से और पर से स्वतः और परतः और नास्ती तो ये कितने हो गए पच्चीस दो
सत्तर
अभी उसमें और लेना है नियति और काल लेना दो जीवादि सात लेना ये नहीं ये तो ये हो ही गए इन एडिशन प्लस ये नास्ती लगाना आप है किस पर ये तो जीवादि ही रखना इसमें कुछ नहीं लेना और इसमें नियति और काल लेना ये नहीं वो अक्रियावादी के ही है ये तो 70 हो टोटल 84 है ना और 14 चाहिए तो उसमें नियति और काल और जीवादि सात पदार्थ और नास्ति यानी इसके 14 भंग हो गए वो 70 और ये 14 84 इसके हो गए समझ में आई बात नीचे लिखो या दूसरे पेज पर लिखो
मैंने
हाँ इसमें भी नास्ती था इसमें भी नास्ती लेना है वो अक्रियावादी में नास्ती पर ही लेना है केवल यहाँ वो स्वतः परता लिया वो इसमें स्वतः परता कुछ नहीं लेना नियति है हाँ और वो काल है उस पर ये भंग लगाना है सात तत्वों के ये हो गए अक्रियावादी के अज्ञानवादियों के 67 है ना तो नौ पदार्थों पर सात भंग लगाए अज्ञान आए ना उनको तो अज्ञान इन्हें नहीं जानता ऐसा कौन जानता है वो नहीं रखना है सात भंग है ना अस्थि नास्ति वगैरह वो लगाना जीव अस्थि है ऐसा कौन जानता है जीव नास्ति ऐसा कौन जानता है ऐसा नौ पदार्थ लेना नौ पदार्थ इंटू सात भंग अज्ञानवादियों के 67 उसमें 63 तो ऐसे हो गए नौ पदार्थों पर सात भंग 963 और फिर जो शुद्ध पदार्थ के यानी सात पदार्थ कहते हुए शुद्ध पदार्थ पर केवल चार लगाना है अस्थि नास्ति और अवक्तव्य सात भंग कौन से मालूम है एक है अस्थि एक है नास्ति एक है अस्थि नास्ति एक है अवक्तव्य एक है अस्थि अवक्तव्य नास्ति अवक्तव्य और अस्थि नास्ति अवक्तव्य इसमें से चार ही लेने हैं पहले अस्थि नास्ति और अवक्तव्य इन चार पर शुद्ध पदार्थ लेना वहाँ वो नौ पदार्थों के भेद नहीं करना बस शुद्ध पदार्थ ऐसा किया उन्होंने अब वैनायिक के है वो 32 है
तो
हाँ वो इन एडिशन जैसे अज्ञानियों के भी हमें हाँ प्लस फोर कर्मकांड होना चाहिए। मैंने पेज नंबर नहीं लिखा हाँ कर्मकांड पेज 251 गाथा 876 से कर्मकांड पेज 251 गाथा 876 से आगे यहाँ क्या लिखा है ज्ञानम क्या क्या लिखा है ज्ञान मार्ग जीवकांड लिखा है हमने कहाँ पर अच्छा अच्छा फुटनोट में फुटनोट में जो लिखे हैं ना उन्होंने वो तो कौन से अज्ञान मतवादी है वो टीका 360 ये है ना मेरे पर कर्मकांड भी ले लेना आप
ये विनय के कौन से मन वचन का है
वैनय के भी नहीं बताए मैंने वो आने दो उसको लिखना होगा तो कर्मकांड लाल वाला हाँ प्लेन लाल अरे इसमें भी है जीवकांड में है चार सौ चौरानवे प्रश्न नहीं उसका वर्णन वहाँ किया है उनके नाम यहाँ लिए हैं केवल उसके 184-184 इतना ही लिखा है कर्मकांड के भावाधिकार में है हाँ पेज टू फिफ्टी वन क्या लिखा है इसमें पेज गाथा 876 गाथा निकालो 751 होगा नहीं से 876 आगे आगे गलत है
मैंने तो लिखा ही
पेज वो उसमें होगा इसका अर्थ है ढूंढारी भाषा का उनमें अलग अलग नंबरिंग किया होगा ये हमारी पुस्तक की बात नहीं है हिंदी की बात नहीं है 786 गाथा निकालो ना हाँ मेरी पुस्तक है 765 और वहाँ जो लिखा है ना पेज नंबर वो ढूंढारी का है ये हिंदी 765 हाँ तब हमने ढूंढारी का लिखा था क्योंकि तब तो हिंदी का ट्रांसलेशन ही नहीं हुआ था
हाँ,
ये 2003 में पढ़ा था,
पढ़ा था तभी ट्रांसलेशन
और ट्रांसलेशन तो 2006 में किया था मैंने वो कर्म जीव कांड का कर्मकांड का तो उसके 2 साल बाद हुआ था
ये तो ये जीव कांड में है ना
कर्मकांड में
कर्मकांड में
गाथा लिखते तो कोई कंफ्यूजन नहीं 876 अभी वैनिक वादियों में लिखा ना, लिखना है ना आपको अस्थि नास्ती और प्लस एडिशन फोर वो कैसे लेना अस्थि नास्ती केवल
अवक्त चार ही
और वो किस पर लगाने चार शुद्ध पदार्थ
नौ पदार्थ
वो नौ पदार्थ अलग नहीं नौ पर नहीं शुद्ध पदार्थ अस्थि नास्ति अवक्तव्य वगैरह वाले सात भंग ही बोलेंगे, सप्तभंगी यानी देखो ये क्या करता है, नहीं जानने को अज्ञानवादी है ना ये, तो जीवादि नौ पदार्थों में से एक एक को सात भंगों की अपेक्षा नहीं जानना, यानी वो क्या कहते हैं जीव अस्थि है ऐसा कौन जानता है, जीव नास्ति यानी जीव नहीं है ऐसा कौन जानता है, ऐसा हाँ। और शुद्ध पदार्थ जो है अस्थि नास्ति और अवक्तव्य, शुद्ध पदार्थ है ऐसा कौन जानता है, यानी ऐसा जानने वाला कोई नहीं है, ऐसा अज्ञानवादी है, जानने वाले को स्वीकार नहीं कर रहा, यानी शुद्ध पदार्थ नहीं ऐसा कौन जानता है, शुद्ध पदार्थ है और नहीं है ऐसा कौन जानता है, ये अस्थि नास्ति वाला। और शुद्ध पदार्थ अवक्तव्य ऐसा कौन जानता है, यानी वो तो ज्ञान को स्वीकार नहीं, अज्ञानवादी है वो, यानी अज्ञानवाद वाले वस्तु का न जानना ही मानते हैं, बस यही उनका कहना है, यानी इतने सारे पदार्थ है ऐसा कोई नहीं जानता, ये उनका अज्ञानवाद है। यानी ये जो है ना ये भंग वगैरह चलो अभी हम वैनायिकवादी की बात लिखना थी आपको, उसके 32 है, तो पहले चार है मन से वचन से काय से और दान देने से, ये विनय करते हैं बस, विनय में ही धर्म मानते हैं, मन से करना, मन से वचन से काय से और दान देने से, कुछ देने से। अब किसको किसको देना है, धर्म होता है इनको देने से, हाँ आठ बातें हैं, देव राजा ज्ञानी
यति
जति, ये यति ज्ञानी जति बूढ़ा यति बूढ़ा बालक माता और पिता। अभी मैंने कौन सा पेज नंबर 765 बताया था ना, 765 था अज्ञान, अभी वैनिक वाला आगे की पेज पर होगा। तो इनके इस प्रकार से चार प्रकार से विनय करना है, यानी ये विनय करने से ही सिद्धि होती है ऐसा मानते हैं, इनका विनय करो तो आपको कल्याण हो जाएगा। कैसे करना है, तो मन से करो, वचन से करो, काय से करो, उनको कुछ दे कर करो, जैसे हम भी नहीं कर, रोगी को मिलना है तो कुछ लेके जाते हैं, बच्चे को मिलना है तो कुछ लेके जाते हैं, माता पिता को यति को, ऐसे वो उसी में धर्म मानते हैं, उसी से कल्याण मानते हैं। तो किस किस को देना है, देव को, राजा को, ज्ञानी को, यति को, बूढ़ा बालक माता और पिता को। वैनिकवादी, हाँ वो मिथ्या तो है ना, क्योंकि इनकी विनय करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, धर्म होगा मानते हैं, इनका विनय करने से धर्म होगा। ये पेज नंबर अभी 770 हाँ कर्मकांड। हाँ हाँ इतने 363 पाखंड मत, तो इन सबका
निराकरण विनय का, जो ये देव को लिया वह सच्चा देव लेना के
अभी लेंगे उनके, केवल वो विनय करो और आपको मोक्ष हो जाएगा, ख्याल में है ना। अभी सच्चा देव को मानने वालों को इतना अज्ञान भी नहीं होगा कि उसका स्वरूप अगर मानते हैं तो। वो तो चलता है, तो उसको हमने कल्याण हो गया हमारा। लोग कहते ना उनका नाम ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ये 363 मत हमने देखा। तो ये हो गया हमने एक पैराग्राफ होगा 109 पेज पर। तो पूर्व में कहे हुए क्रियावादी आदि के ने सबका मिलकर कुल भेद 363 होते हैं। आगे बताएं इस शास्त्र में कौन से शास्त्र की बात है? बोला ने उसमें जीव स्थान है, जीव सेकंड पैराग्राफ, नया पैराग्राफ, पेज नंबर 109। अब कौन से पेज पर है? 109 पर है। इस शास्त्र में है ना, जीव स्थान में धौला है, परंतु वो पूरी टीका है। उसमें हमारा शास्त्र कौन सा है? जीव स्थान, पहला खंड चल रहा है, उसका नाम है जीव स्थान। तो इस स्थान में, इस शास्त्र में यानी जीव स्थान में, अभी उन्होंने ये सारे अंगों की बात बता दी है। ये विषय किसका चल रहा था? देखो जैसे ये अंग द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत की चर्चा अपनी निकली थी।
तो ये 11 में निमित्तादीन कथन ये है, 11 अंगों में निमित्तादीन कथन ये है कि
उसका अलग अलग विषय है ना, हर एक का, हर अंग का विषय अलग अलग है। हाँ, अर्थाधिकार चल रहा था पेज नंबर 97 पर। ये भी नया ग्रंथ का अवतार हो रहा है ना, तो पहले जीवस्थान नामक ग्रंथ का अवतार हो रहा है, तो अवतार की बात 73 पर बताई थी। ये जरा रेफरेंस इसलिए बता रही हूँ कि हम विषय आता है नया तो हम बह जाते उसमें। तो यहाँ पहला खंड है जीवस्थान, उसके उत्पत्ति का क्रम कहेंगे तो अवतार चार प्रकार का होता है, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुभव। वो क्या क्या होते उसकी चर्चा की उन्होंने। तभी जब बताना जीवस्थान की बात चल रही थी तो उसकी अनुपूर्वी बताई पेज नंबर 97 पर। 73 पर हमने वो उसके क्या क्या होता है उसको देखा था। 73 पर अवतारण ग्रंथ की उत्पत्ति होती है तो पहले उपक्रम बताना चाहिए, फिर निक्षेप, फिर नय, फिर अनुगम। अब अनुपूर्वी भी तीन प्रकार की होती है, पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथाकथानुपूर्वी। तो ये जीवस्थान कौन सी अनुपूर्वी वाला है? तो 6 खंडों में उसका नाम पहला है, तो पूर्वानुपूर्वी से पहला नंबर है। या वो श्रुत ज्ञान का भेद है, इसलिए श्रुत ज्ञान प्रमाण है, इसलिए उसका श्रुत ज्ञान प्रमाण की अपेक्षा दूसरा या पांचवा भेद इस तरह से ले लेना उसका। ये बात हमने 92 पेज पर, देखो वहां से बात चली थी 92 पर। अनुगम पर आए थे हम। मैंने अभी कौन सा पेज नंबर बताया था आपको? 73 के बाद 97 बताया था। हाँ, 97 पर। के पहले एक मिनट, यानी पहले जीवस्थान पर उन्होंने उपक्रम बताए थे, उसका अनुपूर्वी बताया, निक्षेप, नय और अनुगम बताया था। अनुगम की बात चल रही थी अपनी और उसमें ये श्रुत ज्ञान की बात आई थी। अनुगम में श्रुत ज्ञान, हाँ, प्रमाण वाले, तो ये श्रुत ज्ञान प्रमाण है उसकी बात चल रही थी। फिर वो द्रव्य श्रुत के लिए दो प्रकार के बताए, अंग बाह्य और अंग प्रवेश, ये दो प्रकार बताए। उसकी बात होने पर अभी देखो जो हम यहाँ देख रहे थे, अर्थाधिकार में ये बताए, अनुपूर्वी होता है, नाम होता है, वक्तव्यता होती है और अर्थाधिकार है। ये मैं 97 पेज पर बता रही थी, 97 निकालना। नीला क्योंकि प्रमाण की बात बताई ना, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध ये प्रमाण है। अब उसमें आनुपूर्वी वगैरह लगाए उन्होंने, और अर्थाधिकार में उन्होंने अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, उनके कौन कौन से अर्थ अधिकार है उसकी चर्चा अभी तक हमने की। तो इतना सब बताने के बाद अब ये पूछ रहे हैं अर्थाधिकार के बारे में, पूछ रहे कि आपने इतना सारा बताया तो जीवस्थान में किससे प्रयोजन, इन अर्थाधिकारों में से जीवस्थान में कौन सा अर्थाधिकार लिया है, क्योंकि द्रव्य शुद्ध की बात पूरा द्रव्य शुद्ध है, उसमें 12 अंग होते हैं, अंग बाह्य भी होते हैं, उसमें से जीवस्थान में किसको लेना है, कहाँ से ये निकाला है या कहाँ इसका प्रयोजन किससे है। तो इस शास्त्र में क्या आचार अंग से प्रयोजन है, क्या सूत्रकृतांग से प्रयोजन है, इस तरह 12 अंगों के विषय में पूछा करनी चाहिए, एक एक अंग का नाम लेकर वो पूछेंगे। और इस तरह पूछे जाने पर यहाँ पर न तो आचार अंग से प्रयोजन है, न सूत्रकृतांग आदि से प्रयोजन है, इस तरह सबका निषेध करके यहाँ पर दृष्टिवाद अंग से प्रयोजन है ऐसा उत्तर देना चाहिए। इसका उपक्रम 5 प्रकार का है। अभी इसका यानी किसका, दृष्टिवाद का, आनुपूर्वी नाम प्रमाण वक्तव्यता और अर्थाधिकार, ये समझ में आई ना बात। पहले हमने यही बात बताई थी किस पर, श्रुत पर लगवाए थे, श्रुत पर आनुपूर्वी नाम और वक्तव्यता अर्थाधिकार श्रुत पर लगाए, अब दृष्टिवाद पर ये सारे लगा रहे हैं, ख्याल में आ रही है ना बात। तो कहते हैं इसमें 5 प्रकार का उपक्रम कौन सा है, आनुपूर्वी नाम प्रमाण वक्तव्यता और अर्थाधिकार, इनमें से पूर्वानुपूर्वी पश्चादानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी के भेद से अनुपूर्वी 3 प्रकार की है। ये पहले बताए थे वो अनुपूर्वी वगैरह वगैरह होती है वो। हाँ, तो अभी देखो पूर्वानुपूर्वी से गिनने पर ये अंग का नंबर कौन सा है, तो 12वां, 12वां अंग से पश्चातानुपूर्वी से गिनने पर पहला है ना, हमें 12वें से शुरू करके गिनेंगे तो अंत से पहला है, और हम गिनती नहीं कहेंगे डायरेक्ट, हमको केवल बताना है। तो यथा तथानुपूर्वी से गिनने पर दृष्टिवाद अंग से प्रयोजन है। नाम, इसमें अनेक दृष्टियों का वर्णन किया गया है इसलिए इसका दृष्टिवाद यह गौण्य नाम है। गौण्य नाम आपको याद होगा, गुण के अनुसार नाम रखना उसका नाम है गौण्य। गौण्य नो गौण्य वगैरह हमने देखे थे, उसके भेद देखे थे 10 प्रकार के। अब प्रमाण, अब ये दृष्टिवाद का प्रमाण कितना है, कहते अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति और अनुयोग आदि की अपेक्षा संख्यात प्रमाण है, भले वो कितने करोड़ों क्यों न हो वो भी संख्यात हो गए, क्योंकि अक्षर और पद और ये सारे शब्द होते हैं वो तो संख्यात होते हैं। और अर्थ की अपेक्षा अनंत प्रमाण है, ये उसका प्रमाण, दृष्टिवाद का प्रमाण कितना है, तो शब्दों की अपेक्षा संख्यात है और अर्थ की अपेक्षा अनंत है। वक्तव्यता, इसमें तदुभय वक्तव्यता, वक्तव्यता में हमने ये पूछा था कि स्वसमय का वक्तव्य करते हैं कि पर समय का, क्या दोनों का, ये पहले बात आई थी। तो अभी अभी हमने देखा ना इसका विषय क्या है दृष्टिवाद का, पहले परमतियों को स्थापना करके फिर उसका खंडन करेंगे, एक एक का, एक एक एकांतवादियों का खंडन करेंगे। तो कहते इसलिए कहते तदुभय वक्तव्यता, यानी स्वमत परमत दोनों का कथन होगा इसके अंदर। अब उस दृष्टिवाद के 5 अधिकार है, ये अर्थाधिकार होगा इसका नाम, जैसे नाम है प्रमाण है वक्तव्यता बताए ना, वैसे ये अर्थाधिकार का ये भेद अभी चलेगा। पहले अनुपूर्वी के भेद से बता दिया, पहले अनुपूर्वी बताई, फिर अनुपूर्वी बता चुके, नाम बताया, प्रमाण बताया, वक्तव्यता बताई, अब ये अर्थाधिकार की बात चल रही है, यानी उसमें कितने अधिकार है वो सब बताएंगे। ये सारे किस पर लगा रहे हम, दृष्टिवाद पर,
दृष्टिवाद
पहले यही बात हमने श्रुत ज्ञान पर लगाई थी, यही बात अभी उपक्रम के जो पांच भेद है वो अभी हम दृष्टिवाद अंग पर लगा रहे हैं। तो दृष्टिवाद के पांच अधिकार है, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। देखो ये याद रखना, कौन कौन से पांच है बताए,
परिकर्म,
सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। पूर्वगत ने हमने 14 पूर्व जो सुना होगा, ये पूर्वगत में 14 पूर्व होते हैं, उसको पूर्वगत कहेंगे। उनमें से अभी परिकर्म के पांच भेद बताएंगे, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। इस तरह परिकर्म के पांच भेद है। ये व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम कहाँ सुना था अश्विन भाई? अभी यानी किसमें, किसवें नंबर का? पांचवें नंबर, पांचवें अंग का नाम भी व्याख्या प्रज्ञप्ति है। और दृष्टिवाद के परिकर्म का भी एक भेद है, वो भी पांचवा भेद है। चंद्र प्रज्ञप्ति नाम का परिकर्म 36,05,000 पदों के द्वारा चंद्रमा की आयु, परिवार, ये चंद्रमा की आयु कितनी होती है? पल्ले और कुछ होता है ना ऊपर, लाख वर्ष का कुछ तो, और सूर्य के भी पल्ले में और कुछ होती है इसे, दोनों की का ये अभी हम कुछ लोग अभी उसमें देखा था ना। नहीं, वो उसकी मिनिमम आयु पल्ले का अष्टम, पल्ले का आठवां भाग होता है मिनिमम, और पल्ले प्रमाण या थोड़ा सा अधिक पल्ले प्रमाण होती है चंद्र सूर्य की।
नहीं पल्ले प्रमाण ना एग्जैक्ट,
यहाँ भूगोल की पुस्तक थी ना मैंने अंदर रख दी, वो इधर ऐसा कपड़ है उसके वो थैली के अंदर होगी। हाँ उधर से एक लाओ ना कहीं पर से, हाँ अपना भूगोल कपड़ के ऊपर है वहाँ।
14 साल में मिनिमम आयु कितनी देखी थी अपने पल्ले ना? हाँ तो यहाँ पे
हाँ नहीं इसमें अभी मैं मालूम, मैंने कल ही पढ़ा है ना, अभी गुजराती में चल रहा है ना मेरा प्रूफ रीडिंग ज्योतिष में। हाँ इसमें भी लिखा है वैमानिक के पहले है ना, मनुष्य लोक में होगा ना वो, तो
मध्य लोक से होगा ना,
मध्य लोक में होगा ज्योतिष विमान, ऐसे चार्ट बनाए मैंने। चंद्र की आयु 1 पल्ले + लाख वर्ष, सूर्य की आयु 1 पल्ले + हजार वर्ष, बृहस्पति की आयु 1 पल्ले, बुध मंगल शनि की आधा पल्ले, पल्ले प्लस 1 लाख वर्ष,
1 लाख, और सूर्य के 1000 वर्ष,
1 लाख,
1000 वर्ष पल्ले प्लस 1000,
वो सूर्य प्रज्ञप्ति में आ गया, सूर्य की आयु। तो इसमें क्या क्या बात होगी, चंद्रमा की आयु, उसके परिवार, हमने देखा चंद्र का परिवार में 1 लाख वर्ष, 1000 वर्ष, सूर्य ने वो देवों की, हाँ वो सूर्य ने ये ग्रह
पिल्ले में बोझ नहीं पर
उनके परिवार में हम, हाँ एक पल्ले प्रमाण बताई थी, है ना बृहस्पति के 1 पल्ले बताए, हाँ गुरु गुरु बृहस्पति ने गुरु, और बुध मंगल शनि के आधा पल्ले, उसमें परिवार में हम देखते ना चंद्र का एक सूर्य होता है, एक चंद्र के परिवार में क्या क्या है, एक सूर्य है,
करोड़ों
नक्षत्र है, तारे है, वो सारे सब मिलकर, तो वृद्धि गति और बिंब की ऊंचाई आदि का वर्णन होता है। सूर्य प्रज्ञप्ति नाम का परिक्रमा, ऊंचाई ने वो जमीन से कितने हाइट पर है वो भी बताएंगे, और वो उसका डायमीटर वगैरह, बिंबों का डायमीटर कितना है वो भी बताएंगे। यानी वो चंद्र की कहने से, चंद्र के ने वो देव की आयु, और बिंब की ऊंचाई ने वो बिंब जमीन से कितने हाइट पर है, उसका अपना डायमीटर कितने है, वो सब उसका गमन कैसे कैसे होता है उसकी बात करेंगे। सूर्य प्रज्ञप्ति नाम का परिक्रमा 503,000 पदों के द्वारा, वो 36 लाख था, 5 लाख। सूर्य की आयु, भोग उपभोग, परिवार, वृद्धि गति, बिंब की ऊंचाई, दिन की हानि वृद्धि, किरणों का प्रमाण, दिन की हानि वृद्धि अभी हमने देखा था ना, दक्षिणायन उत्तरायण में होता है, दिन छोटे होते हैं बड़े होते हैं, 18 से लेकर
12।
किरणों का प्रमाण और प्रकाश आदि का वर्णन करता है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति नाम का परिक्रमा 325,000 पदों के द्वारा, जम्बूद्वीपस्थ यानी जम्बूद्वीप में पाए जाने वाले, भोग भूमि और कर्म भूमि में उत्पन्न हुए नाना प्रकार के मनुष्य तथा दूसरे तीर्यंश आदि का, और पर्वत द्रह, द्रह ने वो सरोवर होते हैं उसके ऊपर, नदी वेदिका, वेदिका ने वो सराउंडिंग वॉल होते हैं ना, बाउंड्री, वर्ष, वर्ष ने वहाँ देश, वर्ष का अर्थ होते देश, जैसे भरत क्षेत्र या भरत वर्ष कहेंगे। आवास, आवास ये किसके होते हैं आवास, व्यंतरों के,
अरे
देखो व्यंतरों के भवन भी होते हैं, हाँ। व्यंतरों के भवनपुर जैसे समतल भूमि पर होते हैं, हाँ। वो भवनपुर है, नगर होते हैं, और आवास, आवास है ना हाइट पर, अलग अलग हाइट पर होते हैं, यानी विदाउट एनी नीचे कुछ आधार, झाड़ पे होते हैं, पर्वतों पे होते हैं, या समुद्रों के लेवल पर इतने इतने 10,000 हाथ के ऊपर पाए जाते हैं, अलग अलग लेवल पर वो आवास है। अकृत्रिम जिनालय आदि का वर्णन करता है। अभी अपने त्रिलोक सार में तो ये सारे वर्णन हो गए थे। द्वीप सागर प्रज्ञप्ति नाम का परिक्रमा 52,36,000 पदों के द्वारा, उद्धार पल्य से, तीन प्रकार के पल्य होते हैं वो पल्य से याद है, गड्ढा करो इतना बड़ा, रोम खंडों से भर दो, और उसमें से 100 साल के बाद एक रोम खंड निकालो, तो रोमखंड की संख्या वो व्यवहार पल्य में है, और उसके अभी इतने 100 साल के जितने समय होंगे उसको गुना करेंगे तो काल का प्रमाण आएगा, उससे असंख्यात करोड़ वर्षों के समय से गुना करेंगे उद्धार पल्यों का समय, उसके समय संख्या आएगी, यानी वो तो असंख्यात का एक संख्या है वो, और उसको असंख्यात वर्षों के समयों से गुना करेंगे तो अद्धा पल्य आएगा, उसमें आयु नापते हैं। उद्धार पल्यों में द्वीप और समुद्रों की संख्या नापते हैं, कितने हैं,
25 कोड़ा कोड़ी
उद्धार पल्य इतने, तो उसमें द्वीप समुद्रों के प्रमाण का तथा द्वीप सागर के अंतर्भूत नाना प्रकार के दूसरे पदार्थों का वर्णन करता है, कहाँ कौन से पर्वत है, नदियां है, वहाँ कौन कौन रहते हैं, कहाँ कौन से कूट है, कहाँ व्यंतर रहते हैं, कहाँ जिनाल है, वो सब उसमें चर्चा आएगी। व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का परिक्रमा 84,36,000 पदों के द्वारा, रूपी अजीव द्रव्य अर्थात पुद्गल, अजीव द्रव्य तो कितने हैं टोटल, नहीं नहीं जाति, पांच, उसमें से रूपी अजीव द्रव्य कौन सा है,
पुद्गल,
रूपी अजीव द्रव्य पुद्गल, अभी हमने पढ़ा ना, देखो इनके द्वारा रूपी अजीव द्रव्य अर्थात पुद्गल, और अरूपी अजीव द्रव्य अर्थात
धर्म,
धर्म आकाश काल। अभी जीवों के लिए दो भेद किए, भव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध जीव, देखो अजीवों के दो भेद किए, अजीव द्रव्य के रूपी अजीव द्रव्य और अरूपी अजीव द्रव्य, और जीव द्रव्य में भव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध, इन सब का वर्णन करता है ये व्याख्या प्रज्ञप्ति में। ये परिक्रमा नाम का हो गया, उसके पांच भेद हो गए, सॉरी परिक्रम के चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बू प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। अब दूसरा अर्थाधिकार है, दृष्टिवाद अंग का दूसरा अर्थाधिकार है, उसका नाम है सूत्र। उसमें 88 लाख पदों के द्वारा जीव अबंधक ही है, अलेपक ही है, अकर्ता ही है, अभोक्ता ही है, निर्गुण ही है, अनुप्रमाण ही है। आप अभी पता चला होगा ये सब कैसे है, ये सब मत है मिथ्यावादियों के, क्योंकि वो एकांत मत है ना, किस कौन से कौन से। तो निर्गुण ही अनुप्रमाण ही है, जीव नास्ति स्वरूप ही है, जीव अस्ति स्वरूप ही है। पृथ्वी आदि पांच भूतों के समुदाय रूप से जीव उत्पन्न होता है, चेतना रहित है, ज्ञान के बिना भी सचेतन है, नित्य ही है, अनित्य ही है, इत्यादि रूप से। इत्यादि में बहुत सारे उन्होंने कुछ कुछ एग्जाम्पल बता दिए, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादियों के 363 मतों का पूर्व पक्ष रूप से वर्णन करता है। यानी ये विक्षेपिणी हो गई ना, तो पूर्व पक्ष में इसको प्रस्तुत किया। यह उनका मत पहले प्रस्तुत किया। हाँ, और बाद में उसका स्व समय का कथन करेंगे ना। यह यानी अन्य भी कोई अन्य ने जो ये तो यहाँ तो 363 मत तो बता ही दिए हैं, अन्य भी जो कुछ मत है उसकी भी यहाँ बता देंगे। तो त्रैराशिकवाद, नियतिवाद, विज्ञानवाद, शब्दवाद, प्रधानवाद, द्रव्यवाद और पुरुषवाद का भी वर्णन करता है, कहा भी है। ये ऊपर लिखा है देखो प्राकृत में 83 एक नंबर का फुटनोट, 83 यानी त्रैराशी कहा। मैं नीचे फुटनोट में से पढ़ रही हूँ। गोशाल प्रवर्तिता यानी गोशाल ने जो उत्पन्न किया, आजीविका पाखंडिन त्रैराशिका उच्चन्ते। त्रैराशिक यानी तीन राशि, उसमें से कौन कौन आए, गोशाल प्रवर्तित आए, आजीविका नाम वाले भी आ गए और पाखंडी नाम वाले भी आ गए। कस्मात् इति चेत् उच्यते, ऐसा क्यों कहते हैं, यह ते सर्वं वस्तु त्रयात्मकम् इच्छन्ति। ये जब सारे जो है वो वस्तु को तीन प्रकार से मानते हैं, तद यथा जीवो अजीवो जीवा जीवश्च, लोक अलोक लोकालोकश्च, सद असत सदसत, नये चिंतायाम अपि त्रिविधम नयम इच्छन्ति तद यथा। यानी सब जगह वो तीन प्रकार मानते, जीव अजीव और जीवाजीव, लोक अलोक और लोकालोक, सद असत और सदासत। नय के लिए भी तीन प्रकार के नय को बताते हैं, तद यथा द्रव्यासिकम पर्यायासिकम उभयासिकम च। ये सुभयास्तिकम है तो उभयास्तिकम चाहिए, सु के बदले मुंह होना चाहिए था, उभयास्तिकम
उभयास्तिकम मुंह चाहिए। हमने किया था
पहले, किया था हमने। ततस्त्रिभी राशि भी शरंती इति त्रैराशिका, यानी वो तीन को ही मानते हैं इसलिए वो त्रैराशिक कहते हैं उनको। सेकंड समय हो गया, ये नियतिवाद को पढ़ लेते हैं। नियतिवाद किसको कहेंगे, नीचे नियतिवाद यानी दैववाद, ये सारा नियति के ही अधीन है मानने वाले। हमारे में एक वो समवाय में से एक है, परंतु ये तो सर्वथा वैसा ही मानते हैं। जत्तु जे जदा जेन जहा जस्य नियमेन होदि तत्तु तदा तेन तहा तस्य हवे इदिवादो नियदिवादो दु। यानि जिसका जहा जिसके द्वारा जिसका जो नियम होना है वही होता है, वहाँ वहाँ होता है, ऐसे तो उनको लगता है हमने भी ऐसा ही कहा है ना कार्तिकेय नुब्रेक्षण, परंतु वहाँ पांचों समुदायों का स्वीकार है, वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये तो नियतिवादिनः ते ही एवं आहु नियतिर्नाम तत्वांतरम अस्ति यद्वशात् एते भावाः सर्वेपि नियतेन एव रूपेण प्रादुर्भावम अश्नुवते न अन्यता। यानी नियति नाम का वो एक तत्व ही मानते हैं और सब कुछ उसके अधीन है मानते, ये कहना चाहते तथा ही यद यदा यतो भवति तद तदा तत एव नियतेन एव रूपेण भवत उपलब्ध्यते। यानी जैसा जो जहाँ जैसा होना है वैसा ही होता है, वो नियति के कारण होता है। अन्य अन्यथा कार्य भाव व्यवस्था प्रतिनियति व्यवस्था च न भवेत नियामक अभावात्। यानी वो नियति उसका सबका नियामक है, ये कहना चाहते हैं। उसके बिना नियति के बिना कुछ कार्य नहीं होगा। तत एव कार्य नियत्यतः प्रतीयमानानां एनां नियतिं को नाम प्रमाण पथ कुशलो बाधितुं शमते। वो ऐसा भी मानते हैं कि इसको कौन बाधा करने के लिए समर्थ है। माँ प्राप्त अन्यत्रापि प्रमाण पथ व्याघात प्रसंगा। अभी जो ये उसका स्वरूप बताया, हाँ वो विज्ञानवाद क्या है उसको कल देखेंगे। इतना डिटेल बताया है। हाँ जावानी के ज्ञान सूजे लोका।